तमस्तु मा विद्विषा वहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
माहेश्वरी मंगलम दिशतु
Shanti, Shanti.
हरि ओम। भगवत भक्तजन, इस बार पुनः तीर्थ यात्रा के एक तीर्थस्थल आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आश्रम एक तीर्थस्थल है। कितने महापुरुषों का आगमन इस प्रेमपुरी आश्रम में हुआ है। नारायण, सहज और स्वतः एक पावनता इस स्थान पर है और मैं खुद भी महसूस करता हूं उस पावनता को। और यहां आने पर ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे सामने है, सुरक्षित है हूं। इसलिए भगवत भक्तजन, ईश्वर के अनुग्रह है। इस वर्ष का प्रवचन विषय हमने रखा शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। भगवत पाद आचार्य शंकर विरचित है। इस स्तोत्र में जो मुख्य बात है, क्षमापन, साधक एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां वो खुद ईश्वर के पास जा करके अपने सारे अवगुण, अपने सारे चाह, जिसके चाह से वो शायद ईश्वर से भी दूर चले गए, अंत तक वो खुद अनुभव करते कि एकमात्र गति, एकमात्र स्थिति वही है। और फिर सारा जीवन का जो कर्म है, जो भी उन्होंने पाने की इच्छा की, शायद पा भी लिया, परंतु मृत्यु के सन्निकट पहुंचते पहुंचते उनको ऐसा एहसास होता है जो अवश्य कर्तव्य वो हमने नहीं किया, जो अवश्य प्राप्तव्य वो हमने नहीं पाया। और फिर उनके सामने बीते हुए जीवन के प्रति एक कंप्लेन भी हो सकता है, एक व्यक्ति जीवन में अवसाद को भी वो प्राप्त कर सकता है, परंतु फाइनली वो जा करके ईश्वर के पास एक प्रार्थना, और वो प्रार्थना भी कोई मांग को लेकर के नहीं, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नारायण, वो प्रार्थना व्यक्ति जीवन में जो विस्मृतियां, जो गलतियां वो किए, उसको लेकर के ईश्वर के पास जाकर के क्षम्यताम भो ईश्वर, हे भगवान आप हमें क्षमा करें। भगवत भक्तजन, कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। व्यक्तित्व को परिशोधन करते हुए अगर हमारा जीवन उस प्रार्थनामय बन जाता है तो नारायण वो जीवन दिव्य होता है। ईश्वर प्राप्ति वो हम व्यक्तिगत अनुभव व्यक्तिगत बातें अगर कहें तो वो मैं नहीं चाहता हूं, मेरा एकमात्र प्रयत्न होता है कि निष्कपट भाव से निश्चल भाव से ईश्वर के समक्ष अपनी न्यूनता को प्रकट करे। ऐसा विश्वास हो वो सुन रहे हैं और अपनी न्यूनता को निवेदन करते हुए ही वो उस पावन पावनता को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत पाद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो एक दिव्य विभूति वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा एक अनुभव ऐसा एक प्रबोध को प्राप्त किया जो मनुष्य एक समय अगर वो ऐसा निश्चय कर लेता है सारा किया कराया चेष्टा साधना पुरुषार्थ कृपा अनुग्रह वो सब स्मरण करके ईश्वर के पास जा करके अपनी जो त्रुटि है वो निवेदन कर सकते हैं। एक स्थल एक आश्रय है, इसलिए भगवत भक्तजन इस स्तोत्र के ऊपर मैं कुछ कहूंगा। कल मैं आप लोगों के समक्ष वो जेरोक्स कॉपी भी दे दूंगा, पहले उच्चारण करके फिर। इस संसार में सबसे उत्कृष्ट क्या है आप जानते होंगे जरूर, क्या है? हाँ हाँ जी हाँ वाह, मनुष्य नहीं मानुषाम श्रेष्ठतरम, शास्त्र का यह निश्चय है मनुष्य से श्रेष्ठतर इस सृष्टि में और कुछ नहीं है। ये आप मानते हैं? हाँ नहीं जो सोच करके बोलना चाहिए, है ना? कई बार ऐसा ही लगता है मिल गया और चल रहा है, आगे भी चलेगा और चले जाना है, रहना तो नहीं है। तो इस शरीर को लेकर कितना विव्रत होने की जरूरत नहीं है, परंतु नारायण शास्त्र ऋषि वर्तमान तक मनुष्यों का यही निश्चय है, बड़े भाग मानुषतन पावा, जो कि ऋषि मुनिय सुदुर्लभ है, देवताओं के भी अति दुर्लभ है। और इस मनुष्य जीवन को पाकर के आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? सारे उपनिषद भगवद गीता सब सद ग्रंथ हमें व्यक्ति के जीवन में जो कर्म है जो भाव है और जो विचार है इसको सही दिशा देने का ही नाम है शास्त्र। जीवन कर्ममय है, जीवन में भाव है और विचारों में हम जीते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो ये सारे कर्म भाव और विचार को सही दिशा ये शास्त्रों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप अपनी भावों को, अपनी क्रियात्मक कर्मों को और विचारात्मक जो चिंतनात्मक जो अंतर जगत की विचारों को जब आप सही कर देते हैं, व्यक्ति वर्तमान जीवन से भी वो अधिक खुश और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जन्म मिला और सहज रूप से जो कर्म भाव और विचार प्राप्त किया, उस कर्म भाव विचारों को शास्त्रीय दिशा देना एक परम कर्तव्य है। अपनी कामना वासनाओं से बिल्कुल प्रेरित होकर के इस अमूल्य जीवन को बिताना नहीं है। दो बात है नारायण, कि आप कुछ भी, ये जो एक जगत है बाह्य, आपके सामने एक जगत है और एक जगत आपके पीछे है। जगत लेने से थोड़ा घबराहट हो सकती है। दो बगीचा है मान लो, आपके सामने एक सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत कुछ है, भोग सुख के सारे सामग्री उस बगीचा में पड़ा है, नेम फेम मान प्रतिष्ठा सम्मान स्टेटस, ये सब इस बाह सामने जो बगीचा है उसमें है। और पीछे जो हमारे बगीचा है उसमें एक संतोष सुख, एक आनंद सेटिस्फेक्शन, दया ममता प्रेम, ये सब उस बगीचा में है। हम क्या सोचते हैं, सामने जो बगीचा हम देखते हैं और ऐसा लगता है कि यहीं ये सामने वाले बगीचे में ही जो नेम फेम सक्सेस ये सब है और भोग के नाना सामग्रियां है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा एक विचार है कि अगर इस बगीचा में हम काम करें, इसको पाने की चेष्टा करें, तो पीछे जो बगीचा उसमें जो सफलता सुंदरता प्रेम सहिष्णुता ये सब स्वतः मैं प्राप्त कर लूंगा। इसलिए हमारे जीवन का सारा के सारा चेष्टा हम ये भौतिक जगत के लिए ही करते हैं, क्यों कहीं न कहीं विश्वास है इस भौतिक जगत को अगर हम सफल बनाने में सक्षम होते हैं तो ये जो दया ममता प्रेम सुख शांति ये स्वतः आने लगेगा। परंतु भगवत भक्तजन, ये आपकी गलत सोच है। आपके आउटर वर्ल्ड बाहरी जगत बाह्य जगत जो है वो नेम फेम के चक्कर में आपने सब कुछ अपने अमूल्य जीवन को भी शायद गवा देते हैं, परंतु जिस इच्छा से इस भौतिक जगत को आपने एक्सेप्ट किया, आज आपके पास क्या अनुभव है नारायण, थोड़ा विचार करना चाहिए। जो आप सोचते हैं कि स्वतः आ जाने वाला है, वो स्वतः नहीं आने वाला है। उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, साधना की जरूरत है, प्रेयर की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, एक निराभिमानिता की जरूरत है। इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन भर हम सक्सेस की बात करते रहते, सफल होने की चेष्टा करते रहते हैं, परंतु अंत तक हमारे सामने चार वर्ण के सिवाय और कुछ होता नहीं है। इतने अल्फाबेट्स आपने पढ़ लिया, प्रत्येक अल्फाबेट के जो मीनिंग है उसको भी आपने जान लिया और पा लिया, परंतु आज हमारे सामने क्या है? आधुनिक मनीषी कहते हैं, खूब पढ़ लिया, जिसको आप एजुकेशन कहते हैं। आधुनिक मनीषियों का एक विचार है कि ये सब जो है मिस एजुकेशन है। कितना लगता है कि जिस एजुकेशन को लेकर के हम इतना फूल करके बैठे हैं, आप इसको मिस एजुकेशन बोल रहे हैं। उनका कहना है कि देखो, इतना कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद कितना सीखा? वो कहते अ ब स ड, ये चार ही तो सीखा। अ ब स द और अ के बाद आ, वो सा के बाद जाके बैठा दो तो क्या मिला? अ ब सा द। अवसाद मतलब सब जानते हैं, बस नारायण। इतना कुछ जाना, जानने के बाद आज हमारे पास हाथ में क्या है? एक विषाद, एक अवसाद और बहुत सारा। इस विषाद से जो निकलता है वो है कंप्लेन, बहुत सारा शिकायत, और करते 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 एक समय हमें जाना पड़ता है। ये जो शिकायत है, कंप्लेन है, इसका दायरा बढ़ता है। पहले हमारे शिकायत हमारे तकदीर पर, तकदीर से भी पहले हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, इनके लिए, उनके लिए, इनके लिए हुआ नहीं, मिला नहीं। फिर समाज के ऊपर, समाज की व्यवस्था ही ऐसा, व्यवस्था ही ऐसी है कि बस हम क्या करें, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ठीक है। फिर एक समय जाकर के व्यक्ति सीधा अपने तकदीर के ऊपर, और फिर तकदीर लिखने वाला विधाता के ऊपर। ये हमारा स्टेप है, और फिर बहुत सारा कंप्लेन को लेकर के वो बस निकल जाते हैं। परंतु भगवत भक्तजन, जो भी आप कंप्लेन, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, उसके मूल में कभी आपने सोचा कि जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में जैसा भी है, यह भी एक किसी के आशीर्वाद है, कृपा है। मैं जैसा हूं ऐसा नहीं भी रह सकता हूं, क्या ये हमारे जीवन की एक प्राप्ति नहीं है? परंतु नारायण, जो अनायास मिलता है वो हम स्वीकार नहीं करते कि ये मुझे मिला, ये तो अधिकार है, ये तो मिलेगा ही, और जो छोटी छोटी मांगों को हम रखते हैं, चाह को रखते हैं, वो जब नहीं मिलता फिर एक अंदर से द्वेष, कंप्लेन। एक युवक इतना दुखी, इतना निराशा और एक कंप्लेन जीवन में आने लगा और ऐसा स्थिति में पहुंच गए कि विश्वास नाम की कोई चीज नहीं, न तो संसार के प्रति न ईश्वर के प्रति। और निराशा की स्थिति में पहुंचे कि अब तो शरीर भी त्याग दूं तो कोई आपत्ति नहीं। संत के पास जाकर के वो पूछता है कि स्वामी जी, मेरी जीवन में निराशा बहुत ज्यादा, और खास करके जब मैं ये सोचता हूं कि क्या जीवन में न्यूनतम जो जरूरत है इतना मिलना भी नहीं चाहिए, तो फिर एक अविश्वास उसके प्रति और एक संसार के प्रति विद्वेष, और लगता है कि ये शरीर को छोड़ दूं। और जब मैं अमीरों को देखता हूं, वो युवक कह रहे हैं, तब तो और कष्ट होता है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता, इतना धन होता, तो मैं भी सुखी। संत जी सहज भाव से कहने लगे, अच्छा तुम्हारा कष्ट के मूल कारण है धन पैसा, और निराशा का भी मूल कारण वही है, तो देख पैसा ही तो चाहिए। मेरे पास जो है ना 2 लाख रुपया है, वहां वो 2 लाख रुपया ले जा और तेरा 2 हाथ जो है मुझे दे देना। मैं अभी पूरा भी नहीं किया, किसी ने कहा ये नहीं चलेगा। तो युवक पहले चौंका, बोले अरे ये क्या है। बोले स्वामी जी ये क्या आप बोल रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, 2 लाख से अगर नहीं होता है तो 5 लाख भी पड़ा है वहीं ले ले, तुरंत तेरा 2 पांव काट करके रख देना। तो वो बहुत ही, स्वामी जी ये क्या कह रहे, ये संभव है मैं 5 लाख के लिए अपने पांव काट कर दे दूं आपको। स्वामी जी बहुत सहज भाव से बोल रहे, अच्छा चलो देखो इस थैला में 10 लाख पड़ा है, ले ले तेरा 2 आंखें जो है निकाल करके दे देना। अब वो युवक तिल मिलाया, कहने लगे कि स्वामी जी मैं आपके पास निराशा का समाधान लेने आया, अपने पांव हाथ कटवाने नहीं आया, आंखें निकलवाने नहीं आया, ये आप कैसी बात करते। संत जी सहज भाव से कहने लगे कि बेटा मैं भी तेरे को यही बात समझाना चाहता हूं, तेरे हाथ पांव आंखें लेकर के मैं क्या करूं, मेरा क्या प्रयोजन है, परंतु तू ये विचार करके देख, लाखों रुपया से भी ये अंग तू देने को तैयार नहीं है और न तो तेरे को मिलने वाला है, अगर तू चाहता भी है तो नहीं मिल पाएगा। तो क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है, ये जो तुम निराशा से घिरे हुए हो और ये जो तुम जीवन को समाप्त करने में लगे हो, निश्चय कर रहे हो कि नहीं रखना है, कहां तक सही है। एक एक ऑर्गन, एक एक इंस्ट्रूमेंट को देखो, तुम्हारे पास जो भी है इसका कोई मूल्य नहीं है बेटा। इसलिए निराशा से नहीं आशावादी बनो, पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, इसके द्वारा तुम सफल हो सकते हो। इसीलिए तुम केवल नहीं मिला एक कंप्लेन एक शिकायत को लेकर के बैठ जाना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए चेष्टा करो। मैं इसीलिए नारायण आपके सामने ये कहानी को रखा, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में यही है, हम छोटी सी मांग ईश्वर के पास रखते हैं, वो जब मंजूर नहीं होता है शायद वो अमंजूर के कारण भी हमारी कल्याण ही है। परंतु आपातत कामना जब पराभूत होते हैं, पराजित होते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, प्रभु तेरे सामने इतनी छोटी सी मांग रखा वो भी नहीं दिया, अरे आपने कभी सोचा बिना मांगे हमें वो क्या क्या दे रखा। हम जीवन भर क्या कई जन्म अगर हम ये ऋण को उरिन करने के प्रयत्न करें शायद व्यर्थ प्रयत्न होगा, हम कभी उरिन हो नहीं सकते हैं। हमने शायद कभी उनको उतना निश्चल भाव से निवेदन भी नहीं कर पाया, प्रणाम भी नहीं कर पाया, परंतु तो आज तक वो हमें संभाल के रखा। हो सकता है कि उनके अस्तित्व में उनके एग्जिस्टेंस में उपस्थिति को हम नकारने के लिए तर्क के द्वारा हम नकारने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार नहीं कि ईश्वर है परमात्मा है कोई है हमें देखता है। इतना होने के बावजूद भी वो अभी भी हमें देख रहे हैं। तो क्या जीवन में एक ऐसा अवकाश ऐसा स्थिति व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है जहां जाकर के वो रियलाइज कर पाते कि मैंने सारा जीवन जो किया ये जो गलती ये जो एक अपराध ये जो एक अन्याय, और फिर वो व्यक्ति के जीवन में एक प्रार्थना का उदय होता है। इसलिए नारायण सक्सेस नेम एंड फेम सफल आप किसको कहते हैं और इस आउटर वर्ल्ड में जो भी आप पुरुषार्थ करते हैं प्रयत्न करते हैं इसके द्वारा आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं थोड़ा विचार करना चाहिए। आप जैसे सोचते हैं कि बाहरी जगत को हम अगर ठीक ठाक कर ले तो शायद जो मेरे पीछे जो बगीचा है उसमें जो दया सहिष्णुता लव हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन ये सब स्वतः आ जाएगा नारायण कभी नहीं, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। किसी जगह के मैं जगह पर ऐसे ही सुना रहा तो कोई कहने लगी स्वामी जी आप बात तो कह रहे ठीक है परंतु ये बताइए, मैं एक रिक्शा से कहीं गया और रिक्शा से उतरा पांव में चप्पल पहन करके और मैं मर्सिडीज बेंज से उतरा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं आपको क्या लगता है? आप रिक्शा से उतर रहे और फिर आप मर्सिडीज से कोई उतर रहे, दोनों के टैटस दोनों के ये तो स्वामी जी मर्सिडीज से उतरते ही कोई गेट खोल देता है कोई सैल्यूट मारता है तो वो क्या हमारे एक ये नहीं हो सकता है? मैंने बोले ये तुम्हारी गलत सोच है, जो सैल्यूट मार रहा है जो गेट खोल दे रहे वो आपके प्रति बड़ा श्रद्धाशील है बड़े श्रद्धा रखने वाले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको प्रेम बहुत करता है ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि वो आपके नौकरी करता हो, उसका वो मान लिया है कि साहब को ऐसे करे करना चाहिए और इसीलिए वो गेट भी खोलता है सैल्यूट भी मारते है। इसके मतलब ये नहीं कि वो उनके दिल में आपके प्रति बड़ा सम्मान है, ऐसा नहीं कि आपके प्रति बड़ा प्रेम है लव है। तो नारायण क्या ये जो उत्कर्ष भौतिक जो उन्नति है क्या इसको संभालने से हमारे जीवन में सुख हैप्पीनेस लव प्यार ये सब हमें मिलता रहेगा? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होने पर आप हताशा, निराशा, दुखी, अनसेटिस्फाइड, ये सब प्राप्त करते हैं। वो अलग है, उसके लिए आपको अलग से प्रयत्न करना है कि लोगों के प्रति हमारी प्रेम बढ़े, फिर हम प्रेम की चाह करें, लोगों के प्रति हमारी सम्मान हो, सबके अस्तित्व को समझे, सबके उपस्थिति को समझे, और फिर सबके अंतरात्मा पर थोड़ा झांके कि मैं जैसा, मेरी जैसी चाह है उनका भी वो है। फिर आप देखिए कैसे, आप जिसको पीछे बोल रहे थे कि वो स्वतः आने वाला है, नारायण वो स्वतः नहीं आने वाला है, आप उसके ऊपर, उसके लिए अगर उस बगीचे के लिए काम करते हैं तो ये जो सुख शांति इसके लिए अगर चेष्टा करते हैं तो उतना ही सहज रूप से आप आउटर वर्ल्ड के लिए भी संपन्न हो सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में किसकी प्राधान्यता है, प्रधानता किसको आप दिया, किसको आपने मुख्य माना, जिसको भी आपने मुख्य माना उस पर थोड़ा विचार। इसीलिए मैंने पहले बताया अपने कर्म, अपने भाव और विचारों को सही दिशा देने के लिए शास्त्र है। ये जो सही दिशा क्या है नारायण, भौतिक बात हमें सुखी नहीं कर सकते। सुख के जो जो आप मान्यता को रखे, ये मिले तो सुख है, ये हो तो सुख है, ये हो तो सुख है, नारायण सुख के जितने भी आपने कैटेगरी को रखा कि ये 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 ये, ये होने से सुखी सुख का संपूर्णता है। तो जितने भी विकासशील अथवा विकसित देश है उन देशों को तो आप जाते भी हो थोड़ा देख लेना कितने दुखी व्यक्ति है। ये 2 फरवरी ऐसे कुछ पेपर में टाइम्स में दिया था ना कि अमेरिका में सबसे सुख भोग के साधन अभी बहुत है, उनके पास और नया कुछ आविष्कार नहीं है, वो सुख के लिए जो जो चाहिए वो मिल गया उनको। लिखने वाला भी कितना, वो लिखते हैं नाउ 82% डिप्रेशन। क्यों भाई हताशा, अभी भी 82% उनके पास हताशा है, सुखी नहीं है वो लोग। तो सुख का किसको आप सुखी मानते हैं, तो भौतिक बात के सारा विकास वो कर लिया भोग के, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाया, तो अभी भी हम किधर दृष्टि रख करके जी रहे हैं। इसलिए नारायण सुख का सही परिभाषा क्या है, क्यों हम पहले से उसको भुला देते हैं अथवा हम गाइड ठीक नहीं कर पाते किसी व्यक्तित्व को, किसी युवा वर्ग को कि देखो ये करो, परंतु इसका डेवलप तुम करते हो तो ये स्वतः तुम प्राप्त कर सकते हो। और तुम जिधर दौड़ रहे हो सामने, कितना भी दौड़ो नारायण, उसको तुम कभी पार नहीं पाने वाले हो। विकास भौतिक बात के कभी पार नहीं, आपको अभी तक ऐसा अनुभव हुआ कि अलमिति मन ने बहुत मिला, बहुत पाया, बहुत मिल गया, आप अपनी छाया को कभी लांग सकते, आप जितने स्पीड से दौड़ोगे आपकी छाया उससे भी आगे ही दिखेगी महाराज। तो ये जो दौड़ के होड़ में लगे हैं ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो सुख शांति आनंद पाने की तीव्र लालसा, इसके लिए जो आप बाहरी जगत में दौड़ रहे और आप बोल रहे इसको अगर मिल जाए तो वो मिल जाएगा नारायण, कभी नहीं। आज जो स्थिति है, इसलिए ऐसा एक प्रयत्न, ऐसे चेष्टा, ये तो हमारी अहोभाग्य है कि ऐसा वातावरण में, ऐसे देश में हमें जन्म मिला कि हमें सोचने के लिए एक कुछ खुराक, कुछ थॉट्स मिल जाता है कि उधर भी सोचो, उधर भी कुछ करो, और इसीलिए हमें कुछ करने का एक अवसर है। और व्यक्ति जब संभल जाता है, समझ पाता है, तो फिर उनके जीवन में एक बदलाव, और वो बदलाव नारायण बस उनके एक संतुष्टि, एक सुख एक आनंद, एक तृप्ति, एक पूर्णता को ला देती है। इसलिए भगवत भक्त जन विचार करना चाहिए, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी एक समय जाकर के वो ईश्वर के पास क्षमा चाहते हैं। क्षमा के मूल भाव है निराभिमानिता। क्षमा हम तब मांग सकते हैं जब हमारे जीवन में ऐसा बोध हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो अहंकार के कारण किया और इस अहंकार को समझ करके, अहंकार को पालन करके मैं दुखी हुए और अहंकार से मैं अंधा बन करके गलत दिशा की ओर गया और फिर वो जब मूव करता है नारायण, फिर ईश्वर के पास वो समग्रता के साथ। इसलिए प्रार्थना आप कब कर सकते हैं, कब होता है? देखो, अहंकार को दूर करने का दो विधान है। एक तो सजगता के साथ आप प्रयत्न करो, कभी कभी दया, क्षमा ये सब करके हम ईगो को फुलफिल करते, ये भी एक पद्धति है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे अंदर दया है तो दया मतलब मेरे अंदर एक गुण है, सद्गुण है, परंतु वो दया अगर ईगो को पूर्ण करता है तो वो दया हमारे दैवी संपत्ति नहीं बन सकती। क्योंकि दया मतलब मैंने दिया, चलो। इसलिए दया जो करते ना वो है बाहरी परिस्थिति के अनुरूप दया होती है, और करुणा बिल्कुल सेपरेट है। करुणा है अपनी मन की स्थिति। दयावान व्यक्ति हमेशा सोचता होगा कि भिखारी रहे, क्योंकि भिखारी आपके सामने कुछ आकार प्रकार किया तो उसके परिस्थिति, उसके मांगने की दिशा को देख करके, ढंग को देख करके आपके मन में एक भाव आया, आप पॉकेट से निकाल करके कुछ पैसा दे दिए, ये है दया। करुणा क्या है? करुणा वो बाहरी परिस्थितियों से निर्माण नहीं होता है, करुणा तो मन के एक सहज स्वतः प्रवृत्ति है। जो दया करते हैं अगर उसके द्वारा वो ईगो को पूर्ण करता है तो वो हमेशा उनके मन में होगा कि ऐसा भिखारी संसार में रहे, और जो करुणावान है, करुणा, वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कोई यहां भिखारी ना हो, विश्व में कहीं भिखारी ना हो। तो देखो, एक व्यक्तित्व दया करने के लिए भिखारी हो, मांग कर रहे, चाह रहे उनके मन में, और एक प्रार्थना है कि इस संसार में कोई भिखारी ना हो। इसलिए एक दया वो है, अगर दया में अगर आपकी खुद की ईगो फुलफिलमेंट है तो समझना चाहिए वो दया आपके जीवन को सुखद अथवा सत्व में नहीं ले जा सकते। इसलिए सात्विक गुण में दया को रखा। कौन सी दया? जिस जो दया अहंकार को पुष्ट नहीं करता है। इसलिए भगवत भक्त जन बस एक जीवन में ऐसा मूव आद। इसलिए मैं कह रहा था कि अहंकार को आप पूर्ण कर सकते हो अपने सद्गुणों के द्वारा, ये भी एक पद्धति है। और दूसरा पद्धति है, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हम अपने स्वतः चेष्टा से इसको दूर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो फिर प्रार्थना मय बन जाओ, प्रार्थना मैं बन जाओ। बस ईगो को दो ही रूप से आप दूर कर सकते हैं। ये तो सजग होकर के आपके एक्ट के प्रति, आपके भावों के प्रति, आपके विचारों के प्रति सजगता, अवेयरनेस चाहिए कि हमारे कोई भी कर्म में ईगो ना आ जाए, हमारे कोई भी थॉट्स में ईगो से प्रयुक्त ना हो, हमारे कोई भी भाव में ईगो प्रबल ना हो। आप अगर सजग है तो फिर उसमें आप दूर कर सकते हैं, अगर इतने पर भी हम उसको संभाल नहीं पाते हैं तो द्वितीय है कि प्रभु अब तुम एकमात्र सहारा। इसलिए नारायण जब तक अपने अस्तित्व के जो त्रुटियां हैं, जो न्यूनता है, जो दोष है, इसको जब तक आप नहीं पहचान लेंगे तब तक आप स्तुति प्रार्थना नमस्कार ये भी नहीं कर सकते हैं। नहीं तो नारायण न जाने कितने बार हमने प्रणाम किए परंतु एक भी प्रणाम हमारे जीवन को आनंदित नहीं कर पाया। एक यंत्रवत हमारे जीवन हो गया है करना, परंतु कभी आपने ऐसा विचार किया? इसीलिए कहते ये सत्संग सत्सन्निधि सतग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, सत्संग जाना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उस वो जो ईश्वर परमात्मा जो आपके अंदर बैठ करके आपको कंट्रोल कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, आपके सुख दुख चाह के प्रति वो सजग है, उनके बारे में आप जानो सुनो। और फिर व्यक्ति दिल मन ही मन वो तैयार होते हैं। एक समय वो बाहरी जगत से जब उसको चोटें पहुंचती है नारायण, फिर वो विव्रत होकर के उसको मूव होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसके भाव उसके विचार उसके कर्म। और जब वो भाव विचार कर्म, तब वो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग। यही तो है, जो स्वतः संसार के प्रति है वही जब आप सच्चे की ओर मूव कर देते हैं, तो जो कर्म आप खुद के लिए कर रहे थे वो बंधन का कारण हो रहा था, झंझट लग रहा था, वही कर्म आप अलग से कुछ नहीं, वही कर्म आप करोगे, परंतु आपके प्रत्येक कर्म के मूल में वो रहेगा ईश्वर, और प्रत्येक कर्म के एंड में समापन में भी वो रहेगा, आपके प्रत्येक विचारों के मूल में वो रहेगा, और विचार करते करते संशय होते होते एक निश्चय तक पहुंचेंगे तो निश्चय में जाकर के भी उन्हीं को मिलेगा। इसलिए नारायण ये प्रत्येक में अगर आप उनको बैठा सकते हैं, उनके आविष्कार कर सकते हैं, तो नारायण वो जो व्यक्तित्व है, वो जो जीवन है, तो सिवाय प्रार्थना के बिना और क्या हो सकता है? आपने कभी विचार किया कि हम कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं जीवन में? ईश्वर के अप्रत्यक्ष हाथ अगर आपके पास न हो, आपके सर पे न हो, तो नारायण आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी मैं यहां बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं, कोई निश्चयता है कि मैं मंच से उतरूं और मेरी आवाज बरकरार रहे? कोई गारंटी है? मैं देख रहा हूं, क्या निश्चयता है कि इसी आंखों के द्वारा मैं कल भी देख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं नारायण। तो कौन है जो अपने को संभाल करके जरूरतों को दे रहे हैं, परंतु उनके प्रेजेंस नहीं, वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आके कि मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से नहीं, सामने नहीं आकर के खड़ा हो रहे, तो कौन है वो? आज तक हमारे जीवन में जो भी जरूरत है, एक छोटा सा बालक का आगमन हुआ, स्वागत हुए, क्या खान पान है, कहां रहना है, कौन माता पिता है, सबकी व्यवस्था किसने किया नारायण? और आज हम जब समझ पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं बड़ा होशियार बन हो गया, तो फिर आज हम चिंतन में लगे हैं कि मैं कैसे सुरक्षित रह पाऊं, मैं कैसे अपने को संभालूं, मैं कैसे ये करूं। कभी सोच करके विचार करके अगर निश्चय कर लेते हैं, कर पाते हैं कि बस वो कर लेंगे, तो देखिए अंदर से के एक शांति, एक आनंद का अनुभव। इसलिए पुरुषार्थ में कोई कमी न्यूनता नहीं रखनी चाहिए, परंतु अंदर से एक बिलीव हो, एक विश्वास हो कि हमारे पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं, पुरुषार्थ के ऊपर उनकी ग्रेस, उनके कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद मुख्य है। तो फिर व्यक्ति के जीवन में देखिए, वो आउटर वर्ल्ड के साथ भी जुड़े रहेंगे तो उनके अंदर ही अंदर वो एक आध्यात्मिक भी बने रहेंगे और उनके जीवन के सारा चेष्टा, कर्म, उपासना, भक्ति सब जो ईश्वरमुख होने वाला है हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन निराशा नहीं, इस जीवन के प्रति निराशा नहीं, परम आशावान, हताशा नहीं कि बस नहीं मिला, अब इतने दिन बीत गया, बाकी दिन बीत जाए, ऐसा नहीं। नारायण, आप अगर निश्चय कर लेते हैं, जिस दिन जिस क्षण, वो कोई उम्र की कोई बात नहीं है, जिस दिन जिस क्षण आप निश्चय कर लेते हैं उसी दिन से आपकी यात्रा प्रारंभ है। इसलिए भगवत भक्तजन एक प्रार्थना, एक क्षमा की जरूरत है। वो क्षमा शायद हम दूसरों को कर सकते हैं कि तुमको मैंने क्षमा कर दिया। मैं जैसे दया के लिए बताया, वो उसी प्रकार क्षमा भी ईगो को फुलफिल करता है। आप शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्षमा कर दिया आप, मैं उनको क्षमा कर दिया, इसका मतलब क्या है भाई? अपना ही अहंकार को थोड़ा सा देखा, क्षमा कर दिया, ये भाव है, व्यक्त करते अलग रूप से, परंतु यही क्षमा जब हम किसी से मांगते हैं वो मांगना आसान नहीं है नारायण। वो मन की बात नहीं, वो ऊपर की बात नहीं है, और वो भी एक ऐसे दिव्य से, प्रभु तुम हमें क्षमा कर दो। जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य जी किस भाव से वो स्तुति निवेदन किया, और वो भी भगवान शंकर के समक्ष, शिव 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 भो, हे शिव तुम मुझे क्षमा करो। क्षमा किया नहीं, क्षमा करो। तो ये है भाव। मैं कल से उस स्तुति को लेकर के जो भी भगवान की प्रेरणा होगी उसी को मैं निवेदन करूंगा। और आपके हृदय में जो इष्ट देव बैठे हैं, मैं समझता हूं यह मेरी पूजा उस इष्ट के चरणों में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।
पूज्य महाराज के पुण्य शिव चरणों में वंदन। बहुत ही सुंदर विषय महाराज जी द्वारा। जब हम जानते हैं कि हम व्यवहार में जब भी हमारे से कोई गलत काम होता है, या तो कभी कुछ गलत देखते हैं, तो हम तुरंत ही बोल देते हैं शिव 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 शिव। तो यह शिव जो है उसमें कोई ऐसी बातें रखी हुई है इस नाम में, इसके गुण में, जो हमें शायद उस अपराध से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी से हम शिव शिव करकर हमें थोड़े दूर हो जाते हैं उससे। और उसी स्तोत्र को लेकर पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर, इससे हम लोग यह 15 दिवस तक पूज्य महाराज जी द्वारा ये प्रातः प्रवचन में सुनेंगे। पूज्य महाराज जी जब भी पधारते हैं तो हमारे कदम प्रेमपुरी की तरफ जल्दी मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वह सुबह एक जबरदस्त ऑक्सीजन मिलना है। वह एक मंगलाचरण के रूप में पूज्य महाराज जी द्वारा प्रातः हमें प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर, इससे 7:30 बजे ऐसे लगता है कि जल्दी पहुंच जाए। और यह स्तोत्र का हम हमारे एक ऑक्सीजन रूप हमारे पूरे दिवस को उजागर करें, ऐसी सुंदर वाणी पूज्य महाराज जी द्वारा हमें उपलब्ध है। ईश्वर की यह भी कृपा है कि पूज्य महाराज जी पूरे महीने तक हमारे साथ रहेंगे। स्वाध्याय में 8:45 से 9:30 भी जो शंकरानंद जी की गीता पर आधारित जो प्रवचन स्वाध्याय के रूप से चल रहा है, उसमें भी पूज्य महाराज जी के ध्येय पुनीत वाणी का हमें लाभ मिलेगा, डबल मजा है, लेना आना चाहिए। कई लोग भागते हैं, इसे क्षमा की बात है तो क्षमा करें, पर जो बैठ जाए वह कुछ प्राप्त करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि 8:45 से 9:30 भी पूज्य महाराज जी द्वारा जो प्रातः प्रवचन के बाद स्वाध्याय प्रवचन होने जा रहा है उसका जरूर से आप लाभ लें। फिर से आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए शांति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।